ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। पिछले 2-3 दिनों से आप यहाँ बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अवश्य आपके मन में यह संकल्प उठा होगा कि ये संस्था शुरू कैसे हुई और आज कहाँ तक पहुंची है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास मैं आप तक रखना चाहूंगी। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनकी जीवन कहानी भी इसी में सम्मिलित है। यह संस्था 1936 में आरंभ हुई और आज 2025 है, तो 89 ईयर्स ये इस संस्था को हुए। इसका आरंभ पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने किया, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे, ज्वेलर थे, हीरे जवाहरातों के जेवर बनाते थे और इनके ग्राहक उस समय के अंग्रेज थे, राजा महाराजा थे जो भारत में राज्य करते थे। 1876 में आपका जन्म हुआ और 1936 में जब आपकी आयु लगभग 60 वर्ष की हुई, बहुत प्रसिद्धि आपने प्राप्त कर ली थी, तो आप धनी भी थे, दानी भी थे और भक्त भी थे। बहुत ही सुखी परिवार था। विष्णु की भक्ति करते थे। कोई ऐसा मंदिर नहीं था मुख्य जहां दर्शन करने न गए हो। अमरनाथ की भी यात्रा की थी, तो भक्ति तो उनके रग रग में कूट कूट कर भरी हुई थी। गीता का पाठ रोज करते थे बिना नागा। ट्रेन में सफर करते हुए भी सवेरे नहा धोकर पहले गीता का पाठ करना और फिर मुंह में कुछ डालना, ये उनका नियम था। और जो उनके द्वार पर जाता था वो कभी हाथ खाली नहीं आता था। दानी भी थे, बड़ा दिल था, तो धनी के साथ दानी और फिर भक्त, मानो ये तीनों बातों की इनके अंदर कॉम्बिनेशन थी। लेकिन एक बात की कमी महसूस करते थे, शास्त्र तो बहुत पढ़ डाले, अनेक गुरु भी किए, लेकिन क्या कमी महसूस कर रहे थे, सत्य को जानने की इच्छा थी। सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, और उस सत्य को जानने के लिए अनेक गुरुओं के पास जा गए, अनेक शास्त्रों का पठन पाठन किया, लेकिन कहीं से भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। लेकिन एक दिन जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की हुई, अचानक विष्णु की भक्ति में वो तल्लीन थे और अचानक उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आकर के उपस्थित हुए, दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज विष्णु हूं, तुम भी मेरे जैसे हो, तत्त्वम। ये तत्त्वम का जो वरदान था, ये कुछ विचित्र सा वरदान था, क्योंकि विष्णु के भक्त तो थे ही, विष्णु उनके इष्ट थे, लेकिन जब भी किसी भक्त को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो अधिकतर वो इष्ट उनको वरदान देता है। वरदान उनको क्या मिलता है? तथास्तु। तथास्तु माना आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, तथास्तु। लेकिन बाबा को कोई इच्छा इस संसार की थी नहीं, कोई कमी तो थी नहीं जीवन में, लेकिन सत्य को जानने की इच्छा तो जरूर थी। और वरदान कुछ अलग ही मिला, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो तत्त्वम का वरदान मिला। तो जब वो ध्यान से नीचे आए, वो वरदान जो विष्णु द्वारा उनको मिला था, तो मेरे जैसे हो, वो उनके कानों में गूंजता रहा और मन में प्रश्न उत्पन्न हुए कि मैं इन जैसे कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, मैं तो इनका दास हूं, मैं तो विष्णु की भक्ति कर रहा हूं, मैं तो पुजारी हूं, ये कैसे कह दिया मेरे इष्ट ने कि तू मेरे जैसे हो, इसका मतलब क्या है? अब मतलब पूछने के लिए अपने गुरु के पास गए, तो गुरु को भी जितनी समझ आई बात, उस अनुसार उन्होंने कहा, हो सकता है कि भगवान को आपसे बहुत बड़ा कार्य करवाना है, इसीलिए आपको ये वरदान दिया कि तुम मेरे जैसे हो, क्योंकि भगवान तो बहुत कार्य करते हैं, उनका तो वो तो दाता है, तो भगवान का आपको कुछ कार्य करना होगा। तो बाबा को मन में आया, मुझे भगवान का कौन सा कार्य करना होगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कार्य करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, कैसे पता चले? तो गुरु ने उनको राय दी कि उसके लिए कुछ एकांतवास में चले जाओ, एकांतवास में, और हो सकता है उस एकांतवास में आपको कुछ और प्रेरणाएं मिले भगवान से कि आपको क्या कार्य उनका करना है। तो बाबा ने सोचा कि मेरे मित्र बनारस में रहते हैं, मैं उनके पास चला जाता हूं, क्योंकि बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे। उस समय तो डिवाइडेड भारत था पाकिस्तान के पहले, तो हैदराबाद सिंध में रहते थे, अभी तो हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में चला गया। और उनका एक बहुत बड़ा शोरूम था कलकत्ता में, तो हैदराबाद सिंध से कलकत्ता आते जाते थे, तो प्रसिद्ध तो बहुत थे, लेकिन उनके एक परम मित्र थे जो बनारस में रहते थे, तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे पास आइए, यहाँ वाराणसी में, काशी में आप आइए और यहाँ पर रहिए, और एकांतवास हमारा बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ आप कर सकते हैं। तो बाबा बनारस चले गए हैदराबाद सिंध से, और वहाँ विष्णु की भक्ति कर रहे थे कि अचानक एक और उनको साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्होंने इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कैसे विनाश हो रहा है इस संसार का, और वो भी तीन रूप से विनाश हो रहा है। पहला रूप देखा अणु युद्ध के रूप में, एटॉमिक वॉर हुआ, और कैसे वो हवाई जहाज मंडरा रहे थे और मिसाइल धरती पर गिरा, और जैसे ही धरती पर वो मिसाइल गिरा आग ही आग निकली, और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया। ये बाबा ने अनुभव किया। फिर थोड़े समय के बाद बाबा को और साक्षात्कार हुआ जिसमें बाबा ने सिविल वॉर देखा, सिविल वॉर गृह युद्ध, और उसमें बाबा ने देखा कैसे आपस में लड़ रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, तलवारें चल रही है, बंदूकें चल रही है, मारकाट हो रही है, और चारों ओर लाशें पड़ी है, खून ही खून, खून ही खून। ये बाबा ने देखा। फिर एक और साक्षात्कार हुआ उनको, ये बहुत सारे साक्षात्कार हुए उनको, जिसमें उन्होंने देखा प्राकृतिक आपदाएं चारों ओर, मानो पांचों ही तत्व आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, पांचों ही तत्व इतना कहर बचाने लगे जो देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ माना सब कुछ एकदम जलमग्न हो गया, प्रलय जैसी स्थिति पूरी हुई। और जब बाबा होश में आए तो वो तो रोने लगे कि ये मैंने क्या देखा, क्या ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी? अगर ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो फिर हे भगवान आपने ये दुनिया बनाई क्यों? अगर खत्म ही होनी है ये दुनिया तो बनाई क्यों? अब बनाई है तो खत्म तो नहीं करो। हाँ, भाव ये था, बनाई क्यों? फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे भगवान मुझे क्या करना है? मुझे तो ये कहा गया कि आपको आपको ईश्वर का कुछ कार्य करना है, तो मुझे क्या कार्य करना है वो भी तो हमें बताएं। अब ये तो फिर और प्रश्न चिन्ह था कि क्या मुझे करना है। फिर अब इतना विनाश देखा तो एक बात तो निश्चित थी कि उनके अंदर में इतना वैराग्य आ गया संसार से, नहीं तो बिजनेसमैन थे, कैसे राजाओं महाराजाओं के पास वो जाते थे, क्योंकि वो रानियां तो कोई घर महल से बाहर नहीं आती थी, तो उनके लिए बाबा ही जाते थे, उनको हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे, ये उनका बिजनेस था। खास महाराजा उनको बुलाते थे। अब ये तो भगवान ने कार्य क्या दिया वो तो पता नहीं चला, लेकिन बेहद का वैराग्य आ गया। और बाबा को लगा ये हीरे जवाहरात क्या है, ये सब पत्थर है, सब पत्थर दिखाई देने लगे उनको, लेकिन क्या करना है ये समझ नहीं आया। परंतु एक निर्णय उन्होंने ले लिया कि अभी ये दुनिया ही खत्म होने वाली है तो इतना बड़ा बिजनेस मैं करके क्या करूंगा, ये सब खत्म। तो उसको इतना वैराग आया तो बनारस से बाबा कलकत्ता गए, जहां उनका बहुत बड़ा शोरूम था और बिजनेस दुकान थी, और वहां अपने पार्टनर को कह दिया कि अब मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये हीरे मुझे तो पत्थर दिखाई देने लगे हैं। और बिजनेस वाइंड अप करके बाबा वापस हैदराबाद चले गए। और जब वापस हैदराबाद आ गए तो बिल्कुल बदले हुए, एकदम जैसे पूरा संसार से वैराग्य तो था ही, और अपने कमरे में बैठे रहते थे। वहां भी तो विष्णु का ही ध्यान करते थे और यही भगवान को कहते थे, हे भगवान मुझे क्या करना है मुझे बताइए। तो असमंजस में तो थे ही, बहुत कंफ्यूजन था कि आखिर मुझे करना क्या है इस जीवन में। तो कैसे बाबा को एक नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, एक सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, सतयुगी दुनिया, सुंदर दुनिया, और उसमें क्या देखा, आत्माएं परम धाम में सितारों की तरह है, और धीरे 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 एक एक सितारा धरती पर आ रहा है, और धरती पर जैसे आ रहा है, ये सारी धरती इतनी सुंदर बन गई, एक सतयुगी दुनिया बन गई और देवी देवताएं चारों ओर विचरण करने लगे। और उनको आवाज आई कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है लखीराज, ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है। अब सतयुगी दुनिया मुझे बनानी है, समझ में नहीं आया कहेगा ऐसी दुनिया, तो सब कुछ आया नहीं, लेकिन फिर भी विष्णु का ध्यान तो करते थे, तो यही कहते थे मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास कौन सी शक्ति है जो मैं दुनिया को बदल करके या सतयुगी दुनिया बनाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये तो उनको समझ में आया नहीं, मानो ये साक्षात्कार से और ही उलझते गए। फिर अचानक एक दिन उनको उन्होंने अनुभव किया एक बहुत सुंदर प्रकाश, एकदम तेजोमय ज्योति, पर जितनी ज्योति वो प्रकाशमय थी उतनी ही उसमें शीतलता थी। और बाबा ने देखा वो ज्योति धीरे 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 उनके निकट आती गई, निकट आती गई और उनमें प्रवेश हो गई, और प्रवेश होकर के उनके मुख से वो आवाज निकली, हाँ जैसे आकाशवाणी की तरह आवाज निकली, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शिव परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके अपना परिचय उनके मुख द्वारा दिया। अब ये उनकी आंखें तो बंद थी और एक आकाशवाणी उनके जैसे मुंह से निकल रही थी, शिव परमात्मा की अपनी पहचान उनके मुख से दे रहे थे। लेकिन जब होश में आए, आंखें खोली, तो उनके जो रिश्ते जो परिवार वाले थे उन्होंने कहा बाबा आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि बिल्कुल ललाट पर इतनी चमक थी, चेहरा लाल और आंखें खोली तो आंखें भी लाल लाल, चारों ओर लाइट ही लाइट जैसे उनकी ओर दिखाई दी, तो बाबा आपने क्या अनुभव किया। तो बाबा ने बस दो शब्द कहे, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, वो मेरे में प्रवेश हो गई, बाकी मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। फिर थोड़े समय के बाद चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार, ये सब 1936 की मैं बात कर रही हूँ, तो चमत्कार होने लगे। और चमत्कार में क्या हुआ कि बाबा पहले भी वही पहनते थे, परंतु राजाओं महाराजाओं से मिलने के लिए तो बड़ा ठाट था उनका, तो परंतु उस धोती कुर्ते में जैसे खड़े होते थे तो उनके परिवार वालों को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी मुरली बजाता हुआ और पीताम्बर धारी बनकर के ऐसे दर्शन दे रहे हैं, तो सब इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि ये तो श्री कृष्ण भगवान मेरे सामने खड़े हैं। पर बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, बाबा कहते मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। और दूर बैठे भी लोगों को अनुभव होने लगे, श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार होता था और वो उनके पास जैसे जाते थे तो श्री कृष्ण दूर हो जाते थे और सफेद पोशधारी बाबा, बूढ़ा बाबा सामने खड़े हैं, और श्री कृष्ण इशारे से कहता है अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ, मैं आपको वहां ही मिलूंगा इनके पास। अब ये सब तो बाबा को जानते नहीं थे, जो हैदराबाद सिंध में रहते थे वो जानते थे, या जो बिजनेस में थे वो जानते थे, सब तो नहीं जानते थे, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके बाबा के पास आते थे, और कैसे बाबा को देखते ही उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। तो एक क्रांति फैल गई, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। यहाँ तक कि अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है, इंटरनेशनल न्यूज आती है उस टाइम मैगजीन में, उस मैगजीन में भी एक न्यूज आई कि भारत में हैदराबाद सिंध में एक ऐसा चमत्कारी पुरुष है, उनको देखने से श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, मानो इतनी बड़ी न्यूज बन गई। तो ये क्रांति हो गई। फिर दूसरी क्रांति क्या हुई कि ये जो साक्षात्कार हुए वो पुरुषों को नहीं हुए, इतना लेडीज को हुए, कन्याओं को, कुमारियों को हुए। और वो कैसे बाबा के पास आती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कईयों को ये साक्षात्कार हुए और कई दुखी लोग बाबा के पास आते थे। तो उनमें से जो एक जो हमारी मम्मा कहलाती है, जगत अम्बा सरस्वती, अलौकिक माँ हम कहते हैं, तो वो उस समय 17 साल की थी। उनके फादर ने शरीर छोड़ा था, वो भी बिजनेसमैन थे और उनको घाटा पड़ा बिजनेस में, तो हार्ट फेल हो गए थे। तो माँ तो इनकी उनका नाम राधे था, उनकी माँ तो एकदम ऐसे रोती थी। और हैदराबाद सिंध में तो जो सिंध वर्खी लोग हैं, सिंधी लोग, वो बिजनेस में बहुत होशियार, सारी दुनिया में उनकी बिजनेस, चारों तरफ इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, हांगकांग, लंदन, सब जगह बिजनेस उनकी थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। और इनकी जो वाइफ्स थी वो चार दीवारों में कैद, नो सोशल एक्टिविटीज, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो मानो पुरुष प्रधान समाज ही था। और जैसे सीमित बहनों माताओं की कोई एक्टिविटीज ही थी, लेकिन पुरुष तो सारी दुनिया घूमते थे। अब उनको घर बैठे हुआ तो जो जगत अम्बा, जिसको मम्मा कहते हैं, उनका नाम राधे था। तो उनके फादर की जब डेथ हुई तो माँ तो उनकी इतना रोती थी, काले काले कपड़े पहन करके बस रोती रहना और सियापा करना, छाती पीटना। और यहाँ तक कि उस समय जो विधवा बन जाती थी उनके लिए तो केयर नहीं, क्योंकि जब भी वो रास्ते से गुजरती थी तो पुरुष लोग पानी गिराते थे कि अब सुगन है ये बदकिस्मत लाएगी, इसीलिए पानी गिराना, माना इतना इंसल्ट एक विधवा बन, मानो एक इस प्रकार से नारी का शोषण था, नारी को कोई सम्मान नहीं था। और आपको पता है कि उन्हीं दिनों में कैसे राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, ये सब सोशल सर्वर्स निकले जिन्होंने नारी को आगे किया, पर उस समय तो वे बुरी हालत थी स्त्रियों की। और उन बहनों को ये साक्षात्कार हुए। तो जब इनकी माँ इतनी रोने लगी तो राधे, जो मम्मा इस संस्था की कहलाई, वो तो स्कूल में पढ़ती थी और वो अवार्ड लेती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, अवार्ड लेती थी डांसिंग की, नृत्य कला, संगीत कला और वाद्य कला, कई वाद्य बजाती थी, मानो इतनी एक्टिविटीज में थी। और ये माँ की हालत देख के उसको बहुत दुख होता था। तो किसने उसको कहा कि आप इनको बाबा के पास ले जाओ, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करती थी, तो बाबा के पास ले जाओ। और जैसे ही बाबा के पास ले गई, बाबा में से उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और तो रोती रोती आई और कृष्ण का साक्षात्कार करके इतना जोर से हंसने लगी, वो भी एक लोकल न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, मानो उस प्रकार से। अब बाबा तो इनके पिता को जानते थे क्योंकि वो भी ज्वेलरी थे। तो बाबा ने क्या किया, माँ बेटी थी और तो कोई था ही नहीं, तो बाबा ने उनको अपने पास रखा। इसी प्रकार दादी प्रकाशमणि आप देखेंगे, जो इस संस्था की प्रमुख बनी, 38 साल तक बाबा के देह त्याग के बाद उन्होंने सारा प्रश्न संभाला। उनको घर बैठे ये साक्षात्कार हुआ। कैसे श्री कृष्ण कहता है उनको कि मेरे से मिलना है तो इनके, तो ये स्कूल में गई तो स्कूल में चर्चा लड़कियों के बीच में कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, चलो हम सब चलेंगे। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। दादी प्रकाशमणि का नाम रमा था, वो भी 15 साल की थी, स्कूल पढ़ती थी। तो पिता से जैसे ही वो घर में आई, पिता ने ही उनसे कहा कि बेटी यहाँ एक दादा लेखराज है, उनके पास चमत्कारिक शक्ति है, उनको देखने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम जाके देख के आओ क्या होता है ना गीता, अपने बच्चे को देख के आओ। तो कृष्ण की भक्ति तो बहुत करती है और उनके पिता ज्योतिषी थे, तो ज्योतिषी होने के नाते उनकी जन्म पत्री में लिखा था कि मीराबाई बनेगी, शादी नहीं करेगी, मीराबाई बनेगी और श्री कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करेगी, ये जैसे उसकी जन्म पत्री में था। तो वैसे ही वो भक्ति तो बहुत करती थी। तो नेक्स्ट डे सवेरे 10 बजे सत्संग होता था और बाबा गीता पढ़ते थे, गीता उठाते थे, गीता उठा करके शुरू खोलते थे और शिव परमात्मा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव परमात्मा द्वारा वाणी चलती थी। बाबा को समझ में नहीं आता था ये मेरे मुख से कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है और ये जो ज्ञान मुख से निकल रहा है ये मेरे पास है ही नहीं, ये कोई और शक्ति मेरे द्वारा बोल रही है। तो मानो ये अगले दिन जब गई तो बाबा को जैसे ही देखा और थोड़ा सा सत्संग सुना, अचानक ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। बस उसके फिर तो बाबा ने कह दिया, क्योंकि बहुत न्याय आई तो बाबा ने उनका अपने पिता से पत्र लिखा कर कि मैं अपने बेटे कृष्ण को अर्पित, और एक ऐसा ईश परिवार बन गया जिन्होंने तपस्या शुरू की। मानो ये 1936-37 की बात है ये। फिर शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक सबको एक बहुत बड़ा आदेश दिया कि अब ये प्रतिज्ञा करो कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अब प्रतिज्ञा जो की तो एक विरोध शुरू हुआ उस समय हैदराबाद सिंध में, विरोध शुरू हुआ कि ये इतनी छोटी छोटी बच्चियों को आपने प्रतिज्ञा कैसे करवा ली। तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं का कार्य शुरू हुआ, ये मुझे नहीं पता। तो अभी भगवान को तो कौन पहचाने, वो तो बाबा को ही देख। खैर फिर तो बहुत कुछ हुआ लेकिन बाबा फिर कराची चले गए। हैदराबाद सिंध और कराची के बीच में जैसे बॉम्बे और पूना, तो कराची तो बॉम्बे जैसा बड़ा शहर है, तो वहाँ बाबा चले गए और जो बाबा के साथ थे वो सब कराची चले गए। तो मानो ये शुरुआत हुई और कराची में 1937 से लेकर के 1950 तक लगभग 14 साल इन्होंने तपस्या की। करीब 385 भाई बहने थे क्योंकि परिवार के परिवार समर्पित हो गए और बिल्कुल आइसोलेशन में दुनिया की निगाहों से दूर इन्होंने तपस्या की कराची के अंदर। और फिर तो उन्हीं 14 सालों में दुनिया में परिवर्तन आया और ये बहने तपस्या कर रही थी कराची के अंदर। परिवर्तन क्या आया? पहला परिवर्तन आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945, ये 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उस दूसरे विश्व युद्ध में सारा नक्शा दुनिया का बदल गया। कम्युनिज्म आया, मानो जो कुछ भी आया उस समय ये सब यूरोप का नक्शा। और फिर भारत में 1947 में बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ। तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराया। उस एटम बॉम्ब से हिरोशिमा नागासाकी पर कैसे इतनी तबाही मच गई। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये विनाश है क्योंकि एटॉमिक वॉर जैसे हो गया, परंतु जापान ने तुरंत सरेंडर कर दिया तो वो युद्ध वहीं समाप्त हो गया। परंतु बाबा से जब पूछा ये क्या यही विनाश है, तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो ट्रेलर है। तो वो ट्रेलर था 1945 का जो एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा। फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 47 में, तो उसी समय तो ब्लडशेड हुआ, इतना खून रेजी हुई, सिविल वॉर का 100% स्वरूप था, इतने लोग मारे गए, चारों ओर खून ही खून था, ये बहुत बुरा हाल था। उसका इतिहास तो इतना तो किताबों में लिखा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही दुख की स्थिति थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो बाबा से पूछा गया, बाबा ये क्या यही विनाश है, सिविल वॉर? तो बाबा ने कहा ये भी ट्रेलर है। फिर तो तीसरी बात क्या हुई, प्राकृतिक आपदाएं भी उस समय बहुत आई। क्वेटा शहर है बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में है, वहाँ इतना जबरदस्त भूकंप आया जो पूरा का पूरा शहर धरती के अंदर चला गया, वो क्वेटा का। तो इसी प्रकार सुनामी चारों ओर हुआ, बहुत कुछ हुई और इतना विनाश हुआ। ये सब 1950 के अंदर हुआ, 38 से लेकर 50 तक। और जब 1950 में रिपब्लिक हुआ भारत, उस समय शिव परमात्मा ने आदेश दिया कि अभी आप सभी भारत में जाओ, क्योंकि 14 साल तो वहाँ तपस्या की और बिल्कुल किसी ने उनका बाल भी बांका नहीं किया, क्योंकि मुसलमान आते थे वो पूछते थे आप लोग हिंदू हो मुसलमान हो, अगर हिंदू हो तो हिंदुस्तान चले जाओ, ये तो मुस्लिम देश बन गया, अगर आप या तो मुसलमान बन जाओ या तो सिर कटवाओ, ये तीन ऑप्शन, चौथा ऑप्शन था ही नहीं, और या तो हाथ खाली नंगे पैर सब धन संपत्ति सब छोड़कर हिंदुस्तान जाओ। तो ये संस्था वही थी, बिल्कुल सुरक्षित, और इनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। आते थे कोई आतंक फैलाने वाले, पूछते थे आप कौन से धर्म के हो, तो धर्म का वो पूछते थे, तो इन्होंने कहा हमारा मानवता धर्म है, तो बाल खुले देवियों की तरह ये तपस्या करने लगी थी, तो किसी ने उनका बाल भी बांका नहीं किया। यहाँ तक कहते थे हमारा पाकिस्तान बना है, आप पाक लोग हो, पवित्र लोग हो, आप लोग यहाँ ही रहो तो हमारा देश पाक बन जाएगा ऐसे। लेकिन भगवान का आदेश था कि अभी भारत जाना है और भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत में फिर से सतयुगी दुनिया आएगी, इसीलिए आपको भारत जाना है। और कहाँ जाना है वो भी मार्गदर्शन दिया कि एक पहाड़ पर जाना है, क्योंकि कराची में थे और बंटवारा हो गया वो पाकिस्तान बन गया, तो कहाँ पहाड़ पर जाना है, तो ये माउंट आबू का पहाड़ चुना। माउंट आबू से कराची बहुत दूर नहीं है, इट इज ओनली 300 किलोमीटर्स एट द क्रो फ्लाइज, सीधी उड़ान भरे तो 300 किलोमीटर ही दूर है। ये पश्चिम बॉर्डर है माउंट आबू, राजस्थान का पश्चिम बॉर्डर पाकिस्तान के नजदीक ही है, तो ये स्थान उन्होंने चुना। और यहाँ पर माउंट आबू की विशेषता है कि यहाँ पर महल बहुत है, क्योंकि चारों जो रजवाड़े हैं यहाँ, ये जैसे बीकानेर जोधपुर जयपुर कई राजाएं महाराजाएं चारों, इसलिए राजस्थान नाम है, राज्य कई हैं, तो वो राजा लोग यहाँ माउंट आबू में अपना ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बनाते थे। तो चारों ओर यहाँ बहुत महल है। यहाँ आप आए होंगे ज्ञान सरोवर में, तो उसी समय लेफ्ट साइड में अलवर पैलेस है, और रास्ते में आए होंगे तो बीकानेर पैलेस है, नकीले के पास जयपुर पैलेस है, ये सब महल उनों के बने हुए हैं। तो अप्रैल मई जून उनका समर कैपिटल या माउंट आबू होता था राजाओं महाराजाओं का, और उसके पहले जो राजाए महाराजाए आते थे वो, ये रोड भी नहीं था जिस रोड से आप सभी माउंट आबू आए, ये रोड तो अंग्रेजों ने बनाया था, तो वो घोड़े और हाथियों पर चढ़ करके आते थे माउंट आबू। कैसा इतना सुंदर 1000 साल पहले दलवाड़ा मंदिर बनाए माउंट आबू में, बिल्कुल मार्बल का इतना सुंदर जैन मंदिर है, लेकिन हाथी घोड़ों पर वो मार्बल लाए थे। तो वो यहाँ रहते थे 3 महीना, और जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बारिश, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक बहुत ठंडी, तो मानो ये ऋतु बहुत बदलती रहती थी। तो माउंट आबू वॉज लाइक अ ओएसिस इन अ डेजर्ट, चारों ओर रेगिस्तान और यहाँ माउंट आबू इतनी सुंदर हरियाली, आपने देखी होगी जैसे आप आए तो बहुत बारिश, अगस्त का महीना मानो डिसगस्ट का महीना क्योंकि कपड़े नहीं सूखते, कुछ भी नहीं खे। तो यहाँ आना हुआ तो यहाँ एक महल लिया, इसको भरतपुर राजा का महल है, जैसे जहाँ आपने टोल टैक्स भरा होगा वही अंदर में है। तो वहाँ वो रहे और वहाँ 2 साल रहे, 1950 to 1952। और 52 में फिर उनको निमंत्रण मिला और जगह से, क्योंकि जो बहनें समर्पित हो गई थी उनके रिश्तेदारों को पता चला कि ये संस्था भारत में आई है तो उनको निमंत्रण दिया। तो हमारी एक दादी मनोहर इंद्रा थी, उनको बाबा ने भेजा, दिल्ली गई। मनोहर इंद्रा दादी यहाँ ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर भी थी, तो उनको वो दिल्ली गई अपने रिश्तेदारों के पास। तो जहाँ जहाँ वो जैसे घर में गई तो वो ओम की ध्वनि करती थी, ओम, इतना लंबा ओम। और जैसे ओम की ध्वनि करती थी जो उनके सामने बैठते थे उनको दादी से देवी का साक्षात्कार होने लगा। तो देवी आई है पहाड़ों से, देवी आई है, देवी आई है, ये लोग कहने लगे। तो मंदिरों से निमंत्रण मिला, जहाँ भी देवियों के मंदिर है दिल्ली में वहाँ निमंत्रण मिला, तो वहाँ जाकर भाषण करती थी। फिर जमुना किनारे पर जाकर के दिल्ली में भाषण करती थी। फिर तो इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी तो सबने कहा यहाँ एक सेंटर खोलो। तो एक हमारा पहला सेवा केंद्र माउंट आबू के बाहर दिल्ली में खुला 1952 में। तो मानो अभी ये शुरुआत हुई और धीरे 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 चारों ओर हमारे सेवा केंद्र खुलते गए खुलते गए। जो आज हम देख रहे हैं भारत और विदेश में 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं और हमारे जैसी कम से कम 40,000 बहनें समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं दे रही है और आप जैसे लाखों परिवार आ रहे हैं। तो 1952 से लेकर के मानो भारत के चारों ओर सेवा केंद्र खुले और जिन्होंने तपस्या की थी कराची में उन सबको बाबा ने चारों ओर भेजा। मानो 1965 में हमारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती, ये सब टाइटल शिव परमात्मा ने उनको दिए, ब्रह्मा का टाइटल भी शिव परमात्मा ने बाबा को दिया। तो 1965 में उन्होंने अपना देह त्याग किया और दीदी मनमोहिनी जी वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी, क्योंकि बाबा ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं लिया, बहनों को दिया। और आपको मालूम हो कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व में सबसे लार्जेस्ट विमेन रन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको मालूम हो। बिल्कुल, हमारे जैसी हजारों बहनें कैसे समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं दे रही है विभिन्न सेवा केंद्रों पर। तो फिर 1965 में मम्मा के देह त्याग के बाद दीदी मनमोहिनी जी, जो उस समय भी काफी धनाढ्य बहन थी, उनका परिवार बहुत धनी था, और वो जब सिंधी लोग भारत में आए तो मुंबई में खास उन्होंने कॉलेजेस खोले, उन्होंने हॉस्पिटल खोले। तो मुंबई का प्रसिद्ध हॉस्पिटल है जसलोक हॉस्पिटल। तो जसुमती लोकुमल ये इनके चाचा चाची थे, तो उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में खोला। और केसी कॉलेज किशनचंद चेलाराम कॉलेज, केसी कॉलेज भी मुंबई का प्रसिद्ध कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज, ये सब सिंधी लोग जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने वहाँ स्थापित किए, तो उसी परिवार की थी। लेकिन उनको भी बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और वो भी अपना जीवन इसमें समर्पित किया। तो फिर 1969 में प्रजापिता श्री ब्रह्मा बाबा ने 93 की एज में अपना देह त्याग किया और उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका बनी और उसके बाद ही फिर विदेशों में सेवा केंद्र खुले और चारों ओर सेवा केंद्र खुलते गए। जो आज हम देख रहे हैं इतना सारा फैलाव हो चुका है। एक ही लक्ष्य है कि इस भारत को खास और विश्व को आम फिर से सतयुगी दुनिया बनाना है। तो कई पूछते हैं कि इस भारत का भविष्य क्या होगा। हम कहते हैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। विश्व गुरु बनना है, उज्जवल है जरूर। यहाँ तो दूध घी की नदियां बहेगी, फिर से सतयुग आएगा। लेकिन उस दूध घी की नदियों के बहने से पहले रक्त की नदियां भी यहाँ बहेंगी, ये भी भगवान ने साक्षात्कार करा दिया है। लेकिन हमें डरना नहीं है, ये जो कुछ भी होगा उसमें इतना कल्याण समाया हुआ है जिससे ये कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होगा और सतयुगी दुनिया इस सृष्टि पर आएगी। बाकी तो बहुत विस्तार है, हमको कहा गया है 6:30 बजे समाप्त करें, क्योंकि अभी जो हमारी मुख्य प्रशासिका है मोहिनी दीदी जो अमेरिका में रहती है और यहाँ भी रहती है, वो इस समय नीचे शांति वन में है। वो आपसे अभी मिलेगी ऑनलाइन, नीचे है, वो आपसे अभी मिलेंगे 6:30 बजे। तो मुझे कहा गया कि वो तो ऊपर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपसे ऑनलाइन मिलेंगे और आपको आशीर्वचन देंगे। तो मोहिनी दीदी वो भी 1952 में जैसे अपना सेवा केंद्र खुला दिल्ली में, वो सबसे पहले इस संस्था में आई और आज वो मुख्य प्रशासिका है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। तो ये हमारा इतिहास है, संक्षिप्त में आपको सुनाया। और पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो हमारा मुख्यालय है वो माउंट आबू में पांडव भवन है। ये पांडव भवन जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे वहाँ उनके चार स्थान है मुख्य, जो चार धाम गाए गए हैं। बाबा का कमरा है, बाबा की झोपड़ी है, बाबा का हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा वाणी चलाते थे, और शांति स्तंभ है जो ब्रह्मा बाबा का की समाधि है। तो वो आप जरूर देखेंगे जब आप माउंट आबू घूमेंगे, वो जरूर आप पांडव भवन में आकर के ब्रह्मा बाबा की के चार धाम देखेंगे। तो अब हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी मोहिनी दीदी आपके सामने आ जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।